अगला अध्याय संसद की गतिविधियां। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे अपराह्न, दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है, जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं एवं उनका उत्तर दिया जाता है। सामान्यतः प्रश्न सरकारी मंत्रियों सदस्यों से ही पूछे जाते हैं तथा उनका उत्तर दिया जाता है। कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं यदि इनका विषय किसी ऐसे विधेयक संकल्प या अन्य किसी विषय से संबंधित हो जिसके वह सदस्य उत्तरदायी हो। इन प्रश्नों के प्रकार तीन हैं। क, तारांकित प्रश्न। यदि सदन में कोई सदस्य अपने प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से चाहता है तो वह अपने प्रश्न को तारांक लगाकर विशेषांकित करता है। ऐसे प्रश्न तारांकित कहे जाते हैं। तारांकित प्रश्न का उत्तर दिए जाने के समय सदस्यों द्वारा उनसे पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ख, अतारांकित प्रश्न। ये वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में सदस्य चाहते हैं। सदन में इसका उत्तर लिखित रूप में पटल पर रख दिए जाते हैं। इनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ग, अल्प सूचना प्रश्न। यह प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का होता है। इस प्रश्न को सामान्य प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की पूर्व सूचना दिए जाने की कम अवधि में सूचना देकर पूछा जा सकता है। किसी एक दिन की प्रश्न सूची में केवल एक ही ऐसा प्रश्न रखा जा सकता है। ऐसा प्रश्न निर्धारित तिथि को मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न सूची में दिए गए प्रश्नों को निपटाए जाने के तुरंत बाद पुकारा जाता है। आधे घंटे की चर्चा। महत्वपूर्ण सूचना। यदि सदन का कोई सदस्य अपने प्रश्न के मौखिक या लिखित उत्तर से संतुष्ट न हो तो या संबंधित किसी तथ्य में स्पष्टीकरण की अनिवार्यता महसूस करता हो तो वह उस विषय पर 30 दिन एक महीना की पूर्व लिखित सूचना देकर सदन में आधे घंटे की चर्चा, लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार की बैठक की अंतिम आधे घंटे, जबकि राज्यसभा में सभापति चर्चा के लिए नियत किसी दिन 5 बजे शाम से 5:30 बजे तक की मांग करता है। शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। दोपहर में 12 बजे इसका समय निर्धारित होता है। यह दोनों सदनों में 1 घंटे बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय महत्व के किसी विषय को उठाया जा सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए उपबंध 1954 में हुआ। इसमें अध्यक्ष सभापति को स्वीकृति से कोई सदस्य अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है या उस संबंध में प्रश्न करता है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद संबंध मंत्री उस पर शीघ्र ही संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है अथवा बाद में वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकता है। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव द्वारा ऐसे गंभीर प्रश्न सार्वजनिक महत्व के विषयों पर ध्यान खींचने के लिए किया जाता है जिस विषय पर तत्काल विचार न किए जाने के घातक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान की सामान्य कार्यप्रणाली को छोड़कर इस विषय में शीघ्र ही विचार करना आवश्यक होता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की असफलता माना जाता है। स्थगन प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शाम के 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने के बाद उस दिन तक सभा को स्थगित नहीं कर सकता है जब तक कि स्थगन प्रस्ताव का निपटारा न हो जाए। इस प्रस्ताव पर विचार की स्वीकृति के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अल्पकालीन चर्चा। इसके द्वारा सदन के सदस्य लोक महत्व के ऐसे मामले की ओर सरकार का ध्यान खींचता है जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चाओं के लिए सप्ताह में 2 बैठकें निर्धारित कर सकता है। सामान्यतः यह चर्चाएं मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन की जाती है। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को संसद में विरोधी दल के नेता या अन्य सदस्यों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना या उन्हें अमान्य करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। मंत्री परिषद तब तक पदासीन रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। इस विश्वास का पता लगाने के लिए नियमों में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश करने का उपबंध है जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तदर्थ बजट। बजट की स्वीकृत प्रस्तुति और पारित होने के पर्याप्त अंतराल होता है। कभी अपरिहार्य कारणों से बजट निर्धारित समय पर नहीं प्रस्तुत हो पाता। इस अंतराल की अवधि में आवश्यक व्यय की पूर्ति के लिए अनुमानित व्यय के अनुरूप अग्रिम अनुदान की संसद द्वारा स्वीकृति करा ली जाती है। संसदीय समितियां। तदर्थ समिति, अस्थायी समिति। तदर्थ समिति में विशेष कार्य के बाद अस्थायी समिति, इसमें तीन वित्तीय समिति होती है, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सरकारी उपकरण समिति। तदर्थ समिति वे समितियां जो सदन द्वारा या अध्यक्ष या सभापति द्वारा किन्हीं विशिष्ट मामलों पर विचार करने और प्रतिवादन प्रस्तुत करने के लिए गठित की जाती है और इन मामलों पर अपना कार्य पूरा करती है, करते ही समाप्त हो जाती है, जैसे विधेयकों से संबंधित प्रवर या संयुक्त समिति। दूसरा, स्थायी समिति वे समितियां जो प्रतिवर्ष या समय समय पर जैसी भी स्थिति हो सदन द्वारा निर्वाचित की जाती है या अध्यक्ष सभापति द्वारा मनोनीत की जाती है और जो अस्थायी स्वरूप की होती है। अस्थायी समितियों में राज्यसभा तथा लोकसभा की विशेष रूप से तीन वित्तीय समितियां हैं, पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राकलन समिति तथा तीसरा सरकारी उपकरण समिति। पहला लोक लेखा समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा सदस्य तथा 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य सह सदस्य के रूप में होते हैं तथा इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। यह भारत सरकार के लोक लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च किया जाए तथा अपव्ययों को रोका जाए। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का सभापति परंपरागत रूप से विपक्ष का कोई नेता ही बनता है। तीसरा, प्राकलन समिति। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं तथा सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। यह समिति अस्थायी मितव्ययता समिति के रूप में कार्य करती है और इसकी आलोचना और सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। यह समिति वार्षिक अनुमानों को विस्तृत जांच करती है ताकि यह बताए कि अनुमानों को अति अंतर्निहित नीति से क्या संगत मितव्ययता, संगठनों में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार लाए जा सकते हैं। ख, सुझाव दें कि प्रशासन में कुशलता एवं मितव्ययता लाने के लिए क्या वैकल्पिक नीतियां अपनाई जा सकती हैं। ग, जांच करें कि क्या अनुमानों में अंतर्निहित नीति की सेनाओं में रहकर धन ठीक ढंग से लाया गया है। और घ, सुझाव दें कि अनुमान संसद के समक्ष किस रूप में पेश किए जाएं। तीसरा, सरकारी उपकरण समिति। इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें 10 लोकसभा से तथा 5 राज्यसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष समिति के 1/5 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत किया जाता है। यह पहला, समिति सरकारी उपक्रमों के लेखों का परीक्षण करती है तथा दूसरा, यह समिति सरकारी उपक्रमों की कार्य प्रणाली तथा अन्य वित्तीय मामलों और तीसरा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है। सरकारी उपक्रम। पहला, दामोदर घाटी निगम। दूसरा, औद्योगिक वित्त निगम। तीसरा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया। पांचवा, जीवन बीमा निगम।